शांति। आठवीं कला वक्तृत्व कला तथा पत्र लेखन कला, द आर्ट ऑफ स्पीच एंड लेटर राइटिंग। एक प्रभावशाली एवं लोक पसंद भाषण कर सकना, निजी बातचीत में अपने अभिप्राय को स्पष्ट, संक्षिप्त, टू द पॉइंट, सुरुचिपूर्ण ढंग से बता सकना, अपनी बात के लिए लोगों के मन में उत्सुकता, विश्वास तथा मान्यता, कन्विक्शन का भाव पैदा कर सकना, यह भी एक कला है। मनुष्य यदि कुशल वक्ता हो तो वह लोगों के मन में घर कर लेता है और उन्हें अपना सहयोगी, समर्थक, सहायक अथवा सखा बना लेता है। वह अपने प्रिय वचनों से जन जन को अपना बनाकर उनसे अच्छे संबंध स्थापित कर लेता है और इस प्रकार जीवन में सुख का प्रबंध कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य के वचनों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह कहावत ठीक है कि यही 2.5 इंच की जबान मनुष्य को तख्त पर बिठाती है, यही उसे तख्ते पर मतलब फांसी पर चढ़ाती है। क्योंकि यदि मनुष्य हित वचन तथा प्रिय वचन बोले तो लोग उसे ही शासक अथवा मंत्री पद के लिए चुनते हैं, और यदि वह फूट, अराजकता, उपद्रव, देशद्रोह आदि फैलाने की बात करे तो उसे फांसी का दंड दिया जाता है। किसी मनुष्य की बातचीत दो रूठे हुए व्यक्तियों को मिला देती है और अन्य किसी की चुगली, निंदा, अवगुण वर्णन की आदत दो दोस्तों में भी द्वेष तथा घृणा पैदा करने के कारण बन जाती है। इसलिए कहा गया है कि यही जबान कैंची भी है और यही सुई भी है। यदि कोई मनुष्य ज्ञानयुक्त, अनुभवपूर्ण, अनमोल वचन बोले तो लोग कहते हैं कि इस मुख से लाल बरसते हैं अथवा फूल झड़ते हैं, और यदि कोई मनुष्य कटु, अनीतिपूर्ण, अपमान सूचक, मिथ्या या विवादपूर्ण वचन कहे तो लोग कहते हैं कि इसकी जबान तो कुल्हाड़े का काम करती है अथवा इसके मुख से तो पत्थर बरसते हैं। कोई प्रिय एवं मधुर बोल बोलता है तो लोग कहते हैं कि यह तो कोकिला अथवा बुलबुल, नाइटिंगल है, और यदि कोई अपशब्द, अशिष्ट वचन अथवा व्यर्थ वाक्य कहकर सर खपाता है तो लोग कहते हैं यह तो कौआ है। अतः किसी ने कहा है, कौआ किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोलकर जग अपना कर ले। कौआ और कोयल हैं तो दोनों ही रंग में काले, परंतु दोनों के वचन अलग अलग हैं, इसलिए एक की उपस्थिति लोगों को भाती है, दूसरे की अखरती है। यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। फिर यह भी आप देखते होंगे कि एक मनुष्य अभिमान या क्रोध से बात करता है तो झगड़ा पैदा हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, शांति भंग हो जाती है। इतिहास बताता है कि संसार में बहुत सी लड़ाइयाँ इसलिए हुई कि लोगों में शब्द शक्ति का संयम नहीं था। आज घर में, बाजार में, देश तथा अंतरदेशीय क्षेत्र में झगड़े इसलिए हैं कि लोग जो बातचीत करते हैं उसमें स्नेह, सहानुभूति, सौहार्द या भ्रातृत्व की भावना नहीं है, बल्कि अभिमान, क्रोध, द्वेष तथा स्वार्थ भरा हुआ है। यदि नम्रता आ जाए तो संसार सुखी हो जाता है। अतः कहा है कि एक नम्रता सौ को हरावे तथा एक चुप सौ को हरावे। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ कम बोलना है और कहाँ चुप रहना है, यह एक बड़ी सूझ, बड़ी कला, बड़ी साधना है। यदि मनुष्य गंभीर हो, प्रिय हो और नम्र हो और प्रेम युक्त हो तो दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। अतः किसी कवि ने कहा है, मोहब्बत से बना लेते हैं अपना दोस्त दुश्मन को, झुका लेती है अजीजी सरकश की गर्दन को। पत्र लेखन का महत्व। यही बात पत्र लेखन के बारे में कही जा सकती है। आप देखेंगे कि आज कुशल जननायक अथवा विख्यात महात्मा वे हैं जो अच्छा भाषण कर लेते हैं तथा पत्र में भी लोगों के लिए कुछ ऐसा लिख देते हैं कि लोग उन पत्रों को अपने जीवन की अनमोल निधि मानकर उन्हें सुरक्षित रखते हैं। जिन्होंने इस कला को साथ लिया है वे अपने पत्र द्वारा मनुष्य के विचारों को मोड़ लेते हैं, उसके संस्कारों को बदल लेते हैं, उसे दूर बैठे न जाने किस डोर से चलाते हैं, उसकी मार्ग प्रदर्शना करते, उसे किसी अच्छे उद्देश्य के लिए प्रेरित करते तथा एक उच्च लक्ष्य के लिए सहयोगी बनाकर उसका सौभाग्य बना देते हैं। जो मनुष्य जितना गुणी, ज्ञानवान, महान विचारक तथा जनहितैषी होता है, उसके भाषणों तथा पत्रों से भी उसका पता चलता है। महान व्यक्तियों के भाषण अथवा पत्र इतिहास को नया मोड़ देने वाले बन जाते हैं तथा उनका प्रभाव लाखों करोड़ों लोगों पर शताब्दियों तक पड़ता है। गीता भी तो एक भाषण ही है। देखिए तो कितनी शताब्दियों से लोग उसको श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं तथा उसे अपना मार्गदर्शक मानते चले आते हैं। इंदिरा गांधी का राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में जो स्थान था उसका एक निमित्त कारण उसके पिता पंडित नेहरू जी द्वारा लिखे गए पत्र थे। फिर व्यवहार क्षेत्र में आप देखेंगे जो व्यक्ति दूसरों को अपनी बात जचा देता है, मनवा लेता है, कन्विंस कर लेता है, उसके कई कार्य बन जाते हैं। जो अपनी बात को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता, अपने ध्येय या अभिप्राय का महत्व, अपनी वस्तु का मूल्य, अपने आशय की यथार्थता प्रकट नहीं कर पाता, वह जगह जगह असफल होता है। इसी प्रकार जो अपना आवेदन पत्र एप्लीकेशन, अपना प्रस्ताव, अपना निजी पत्र ठीक बना पाता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। अतः एक अच्छा वक्ता, ओरेटर होना तथा पत्र लेखन में निष्णात, मास्टर इन द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग होना जीवन की सफलता का एक बहुत बड़ा साधन है। महान कार्य कर सकने में बहुत सहायक है तथा स्वयं अपने विकास का द्योतक भी है और साधन भी। इसलिए जीवन की महानता में मन, तथा कर्म के अतिरिक्त वचन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि मनुष्य का बहुत सा कर्म खाता तथा संस्कार खाता उसके वचनों से बनता है। पत्र लेखन कला के लिए आवश्यक गुण। ध्यान देने पर आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि इस कला से संपन्न बनने के लिए इन गुणों का होना जरूरी है। पहला मधुरता, दूसरा सरलता, तीसरा ओज, चौथा रमणीकता, पांचवा नम्रता, छठा गंभीरता, सातवा सहृदयता, आठवा सत्यता अथवा सफाई तथा सच्चाई, नवा धैर्य, दसवा ज्ञान एवं विचारशीलता, ग्यारहवा निश्चय, बारहवा स्नेह, अपनत्व एवं हितभावना, तेरहवा उत्साह और उल्लास, चौदहवा दूरदर्शिता। जो मनुष्य मधुर बोलता है, लोग उसके वचनों को सुनना पसंद करते हैं। जो सरल स्वभाव से बातचीत करता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं तथा उससे प्यार भी करते हैं। जिसकी वाणी में ओज होता है, उससे लोग प्रभावित होते हैं और उसकी बात उन्हें याद हो जाती है तथा प्रेरित करती है। रमणीकता का एक ऐसा गुण है जिस द्वारा मनुष्य दूसरे के मन को प्रसन्न करके उनके मन मूड को ठीक करके उनका समर्थन अथवा अनुमोदन प्राप्त कर लेता है अथवा उन्हें हंसाकर अपनी बात को रसीला बना लेता है। नम्रता वाले मनुष्य के आगे लोग भी झुकते हैं तथा उसे महान मानते हैं। गंभीरता वाले मनुष्य का प्रभाव पड़ता है और लोग उसे अपने मन की बात कहने को भी तैयार होते हैं। जिसमें सहृदयता हो, उसकी बात भली लगती है, हृदय को स्पर्श करती है तथा शुष्क नहीं मालूम होती है। जिन मनुष्यों के मन में सच्चाई और सफाई होती है, लोग उनकी बात को मूल्य देते हैं। जो धैर्य से और बात को तोल कर अर्थात सोच विचार कर बात करता है, वह बहुत बोलने से छूट जाता है, बहुत झगड़ों से बच जाता है और सभी पर उसकी शीतलता, सहनशीलता तथा हिम्मत का प्रभाव पड़ता है। जिसकी बातचीत अथवा भाषण में ज्ञान भरा हो, नवीन गहरे अनमोल वचन तथा उच्च विचार भरे हों, लोग उसे बहुत समझदार, तजुर्बेकार तथा विचार कुशल मानते हैं। वे उससे ही राय सलाह लेते तथा उसका नेतृत्व स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य निश्चय पूर्वक बात करता है, उसकी बात में स्वाभाविक तौर पर बल एवं ओज होता है और जो स्नेह तथा आत्मीयता से वचन कहता है, उसके वचन सबके मन में घर करते हैं, बुद्धि में धारण हो जाते तथा प्रेरित करते हैं। पुनश्च जिसके अपने मन में उत्साह और उल्लास हो, वही दूसरों में भी जान डाल सकता है, उन्हें ऊंचा उठा सकता है और जो दूरंदेश हो, उसकी बात का ही महत्व होता है। इस प्रकार ये सभी गुण जिसमें हो, वही इस कला का स्वामी होता है। स्पष्ट है कि ये सभी गुण योगाभ्यास द्वारा ही आ सकते हैं, क्योंकि निश्चय तो योग की नींव ही है। दूसरों के प्रति हित भावना भी शिव अर्थात कल्याणकारी पिता परमात्मा को याद करने से ही आएगी और उस सच्चे साहिब की स्मृति से मन में सरलता, सफाई और सच्चाई के गुण भी धारण होंगे तथा बोल में शक्ति और ओज अथवा जौहर भी भरेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा से योग युक्त हो। तभी तो कहा गया है कि परमात्मा की कृपा से गूंगा भी बोलने लग जाता है। ओम शांति।